गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम एक गीत सौ अफसाने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बातें करते हैं किसी एक गीत की, उससे जुड़े तमाम पहलुओं की, गीतों की रचना प्रक्रिया से संबंधित रोचक जानकारियों की। तो श्रोताओं, आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं 1966 की फिल्म आम्रपाली के सदाबहार गीत जाओ रे जोगी तुम जाओ रे के बनने की रोचक कहानी। FC मेहरा निर्मित और लेख टंडन निर्देशित इस फिल्म के इस गीत की रिकॉर्डिंग में राज कपूर ने पहुंचकर कैसी उलझन पैदा कर दी। इस गीत के लिए जो धुन सोची गई थी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सका इस गीत में। फिर आधे दिन के अंदर गीतकार शैलेंद्र ने कैसे इस गीत को पूरा किया। क्या है इस गीत के केवल एक एक पंक्ति वाले अंतरों का राज, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही है ऋतु कौशिक।
फिल्म संगीत जगत में कुछ संगीतकार ऐसे हुए हैं जो अपने करियर के शुरू शुरू में धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में संगीत देने की वजह से टाइप कास्ट हो गए और जिसकी वजह से सामाजिक और पॉपुलर फिल्मों में संगीत कभी नहीं दे सके। पर ऐसा भी नहीं है कि इन संगीतकारों को धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई हो। तब इन संगीतकारों ने ये तर्क दिया कि इन जोनरों के गीतों को खास सफलता नहीं मिल सकती। पर कुछ दिग्गज संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने सामाजिक फिल्मों के लोकप्रिय संगीतकार होते हुए भी समय समय पर धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों में भी बेहद लोकप्रिय और कामयाब संगीत दिया। ऐसे ही एक संगीतकार जोड़ी है शंकर जयकिशन की, जिन्होंने कई बार साबित किया कि फिल्म चाहे सामाजिक हो या धार्मिक या फिर ऐतिहासिक, अगर संगीतकार में काबिलियत है तो उसे सफलता की बुलंदी तक पहुंचाया जा सकता है। हलाकू, यहूदी और आम्रपाली जैसी फिल्में हैं जो ऐतिहासिक और पौराणिक जोनर के होते हुए भी अपने गीत संगीत की वजह से बेहद कामयाब रही। आम्रपाली लेख टंडन की फिल्म थी जिसमें वैजयंती माला और सुनील दत्त मुख्य किरदारों में थे। फिल्म की कहानी ईसा पूर्व वर्ष 500 के समय काल के वैशाली राज्य की नगर वधु आम्रपाली पर केंद्रित थी। मगध साम्राज्य के राजा अजात शत्रु आम्रपाली से प्यार करने लगते हैं और उसे पाने के लिए वैशाली को तबाह कर देते हैं। पर तब तक आम्रपाली गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर बुद्ध के शरण में चली जाती है। इस फिल्म को लेख टंडन ने इतने खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा कि इस फिल्म को उस साल ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भेजा गया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भले बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिली हो पर इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया है। फिल्म के गीत संगीत ने भी फिल्म को 4 चांद लगाए। शंकर जयकिशन के शास्त्रीय संगीत आधारित इस फिल्म की रचनाएं आज भी कानों में शहद घोलती हैं। फिल्म में कुल 5 गीत थे जिनमें से 4 गीत लता मंगेशकर की एकल आवाज में थे, जैसे कि नील गगन की छाओं में, तड़प ये दिन रात की, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, और तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, और 5वां गीत था नाचो गाओ धूम मचाओ, जिसे एक समूह गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन तमाम गीतों में से केवल एक गीत नील गगन की छाओ में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ था और बाकी सभी गीत शैलेंद्र के थे। आज के अंक में जिक्र जाओ रे जोगी तुम जाओ रे गीत के बनने की कहानी का, जिसे साझा किया स्वयं गीतकार शैलेंद्र के पुत्र दिनेश शंकर शैलेंद्र जी ने। गीत बन रहा था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और लता मंगेशकर इस गीत का रिहर्सल ले रहे थे। संयोग से राज कपूर भी किसी काम से उस स्टूडियो में उस समय मौजूद थे। इस गीत की धुन उनके कानों में पड़ते ही वो उठ खड़े हुए और रिहर्सल की जगह पहुंच गए। उन्होंने शंकर जयकिशन से कहा कि ये धुन तो मेरी है, इसे तुम लोग किसी और की फिल्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। दरअसल बात ऐसी थी कि जिस धुन पर जाओ रे जोगी तुम को शुरू शुरू में बनाया गया था, वो धुन इससे पहले शंकर जयकिशन ने राज कपूर की किसी फिल्म के लिए बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राज कपूर ने उस फिल्म में नहीं किया। इसलिए शंकर जयकिशन ये समझ बैठे कि राज साहब को ये धुन नहीं चाहिए, पर राज कपूर उस धुन का इस्तेमाल अपनी आने वाली की किसी फिल्म में करना चाहते थे। तो उस रिहर्सल रूम में राज कपूर ने ये ऐलान कर दिया कि वो इस धुन का इस्तेमाल मेरा नाम जोकर के किसी गीत में करना चाहते हैं, इसलिए जाओ रे जोगी के लिए शंकर जयकिशन कोई और धुन बना ले। ये कहकर राज कपूर वहां से चले गए। एक पल के लिए जैसे रूम में सन्नाटा हो गया। लेख टंडन एक समय राज कपूर के सहायक हुआ करते थे और राज कपूर से उन्होंने फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू सीखे थे। ऐसे में वो राज कपूर के खिलाफ कैसे जाते या कैसे उनसे बहस करते, पर अब इस उलझन से कैसे निकले, यही बात हर कोई सोचने लगा। स्टूडियो की चुप्पी को तोड़ा लता मंगेशकर ने। उन्होंने हारमोनियम को अपनी तरफ खींचा और ऐलान किया कि चलिए हम एक और गीत बनाते हैं। शंकर जयकिशन ने मिनटों में मुखड़े की धुन बना दी और शैलेंद्र के मुख से भी तुरंत मुखड़े के बोल निकल पड़े, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। लता जी के मुख से इस मुखड़े की अद्भुत अदायगी को सुनकर सब खुशी से उछल पड़े। पर अभी भी उलझन खत्म नहीं हुई। मुखड़ा तो बन गया, पर अंतरे इतनी जल्दी कैसे बनेंगे। तब शैलेंद्र ने ये ऐलान कर दिया, इस वक्त 10 बज रहे हैं, सभी को 3 बजे वापस बुलाओ, मेरा गाना पूरा हो जाएगा। यह कहकर शैलेंद्र ने लेख टंडन को अपनी कार में बिठाया और मिल्क कॉलोनी ले गए। जाते हुए बियर की कुछ बोतलें भी साथ ले गए और कॉलोनी की सुंदर गलियों में टहलते हुए शैलेंद्र मुखड़े को गुनगुनाए जा रहे थे, पर लाख कोशिशें करने के बावजूद अंतरे का कुछ भी उन्हें सूझ नहीं रहा था। टहलते टहलते घड़ी के कांटे भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। घड़ी में 3 बजने में जब कुछ ही समय बाकी था, तब लेख टंडन घबराते हुए शैलेंद्र से पूछने लगे कि अब क्या होगा। शैलेंद्र ने सीधे सीधे उनसे माफी मांग ली और कहा कि आज की रिकॉर्डिंग रद्द करनी पड़ेगी। वापसी में गाड़ी में लेख टंडन और शैलेंद्र के बीच कोई भी बात नहीं हुई। शायद लेख साहब शैलेंद्र जी से खफा हो गए थे। स्टूडियो के बाहर पहुंचते ही जब दोनों ने लता जी की गाड़ी को खड़ा देखा तो लेख साहब डर गए और शैलेंद्र से कहा, अब आप ही उन्हें संभालिएगा, हमने उनका पूरा दिन खराब कर दिया, वो बहुत नाराज होंगी। शैलेंद्र सिर्फ मुस्कुराए। स्टूडियो के अंदर पहुंचकर दोनों ने देखा कि लता मंगेशकर कांच से घिरे सिंगर के कैबिन में पहुंच चुकी हैं। लेख टंडन मॉनिटर रूम में जाते हुए शैलेंद्र जी से कहने लगे कि वो जाकर लता जी से बात करे। शैलेंद्र और लता के बीच क्या बातचीत हो रही थी ये लेख साहब को पता नहीं चला, वो सिर्फ शीशे में से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी क्या बातें हो रही हैं दोनों में, जबकि गाना लिखा ही नहीं गया है। अपनी उत्सुकता को काबू में न रख पाते हुए लेख टंडन ने रिकॉर्डिस्ट से कहा कि वो सिंगर का माइक्रोफोन ऑन कर दे ताकि वो वहाँ क्या चल रहा है उसे सुन सके। जैसे ही माइक्रोफोन ऑन हुआ तो वो शब्द उनके कान में गए जो थे, शैलेंद्र जी बस 2 ही अंतरे काफ़ी हैं इस गाने के लिए, बहुत अच्छे हैं। लेख टंडन हतचकित रह गए। उन्हें ज़रा सा भी पता नहीं चला कि कविराज शैलेंद्र ने किस समय ये अंतरे बना लिए थे। शायद कॉलोनी से वापस आते समय गाड़ी में जो चुप्पी साधे दोनों बैठे थे उस वक्त वो असल में अंतरे ही रच रहे थे। मुखड़ा तो पहले ही बन चुका था, शैलेंद्र जी ने बस 3 पंक्तियां लिखी 3 अंतरों के लिए, यानी कि एक एक पंक्ति का अंतरा। पहला अंतरा था, प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। दूसरा अंतरा था, जीवन से कैसा छुटकारा, नदिया के साथ किनारा। और तीसरा अंतरा था, ज्ञान की तो है सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। भले ही हर अंतरे में बस एक पंक्ति हो, पर इस एक पंक्ति में गहरा दर्शन छुपा हुआ है। कुल मिलाकर इस गीत ने एक कालजयी सदाबहार गीत का दर्जा हासिल किया है और आज भी जब कभी भी ये गीत हमारे कानों में पड़ता है तो कानों से सीधे दिल में उतर जाता है। तो इस तरह से एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी होती है पूरी। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अपनी राय अवश्य हमें बताएं। आपको बता दें कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के इस स्तंभ के लिए शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का है और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के अंक को समाप्त करने की मुझे यानी ऋतु कौशिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.